ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಉಪಸ್ಥಿತ ಸಭಿ ಭಕ್ತವೃಂದ, ಮಾತೃವೃಂದ, ಆಜ್ ಶ್ರೀ ವೈಶಾಖ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ಆಜ್ ಕೆ ಹಮಾರೆ ವೈಷ್ಣವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಕೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೆ ಶ್ರೀ ರಾಧಾರಮಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕಟ್ಯ ತಿಥಿ ಹೇ. ಔರ್ ಕಲ್ ಹೀ ಆಪ್ನೆ ಭಗವಾನ್ ನರಸಿಂಹದೇವ್ ಕಾ ಪ್ರಾಕಟ್ಯ ಕರಾಯೆ ಥೆ. ಆವಿರ್ಭಾವ ಪ್ಲಸ್ ತಿರುಭಾವ್ ಭಿ. ಎಸ್, ಶ್ರೀ ವೃಂದಾವನ್ ಧಾಮ್ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಕ್ಕೆ ಜೋ ಅನುಜಾಯಿ ಉನ್ಕೆ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಇಚ್ಛಾ ಕೆ ಅನುಸಾರ ಶ್ರೀ ವೃಂದಾವನ್ ಧಾಮ್ ಕು ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ನೆ ಮೇ ಮದದ್ ಕಿಯೆ ಥೆ ವೋ ಛಯ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಥೆ, ಜಿನ್ಮೇ ಸೆ ಅನ್ಯತಮ್ ಥೆ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ್ ಭಟ್ಟ ಗೋಸ್ವಾಮಿ. ಉನ್ಕಾ ಶರೀರ ಕಾ ಪ್ರಾಕಟ್ಯ ಹುವಾ ಥಾ ಶ್ರೀ ರಂಗಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮೇ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ತಟಸ್ಥ ಶ್ರೀ ರಂಗಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಉನ್ಕಾ ಪ್ರಾಕಟ್ಯ ಹುವಾ ಥಾ. ಶ್ರೀಮನ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಜಬ್ ನೀಲಾಚಲ ಮೇ ನಿವಾಸ ಕಿಯೆ, ನೀಲಾಚಲ ಮೇ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಾ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಥಾ ಸನ್ಯಾಸ ಲೆನೆ ಕೆ ಬಾದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಲೇಕರ್ ಕೆ ಗಯೆ ನವದ್ವೀಪ್ ಸೆ ಪುರಿ. ಪುರಿ ಮೇ ಪ್ರಚಾರ ಕಾ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರಹಾ ಉನ್ಕಾ ಯಹಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಹೇ. ಭಗವಾನ್ ನೆ ಯೇ ಸಿಖಾತೆ ಹೇ ಆಪ್ನೆ ಆಚರಣ ಸೆ ಕಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರ ಉನ್ನೆ ಉತ್ಕಳ ದೇಶಕ್ಕೂ ಗಯೆ ಒಡಿಶಾ ದೇಶ ಮೇ ಜಗನ್ನಾಥ ದರ್ಶನ್ ತ ಕರ್ನಾ ಥಾ, ಲೇಕಿನ್ ದರ್ಶನ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಥಾ, ಕೇವಲ ದರ್ಶನ್ ಕರ್ನಾ ಕರೆ ಭಕ್ತನ್ ಲೋಗ ಕಭಿ ಯಹಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ಕೇವಲ ದರ್ಶನ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ನಹೀ ದರ್ಶನ್ ಕೆ ದೌರಾನ್ ಪ್ರಚಾರ ಭಿ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ನಹೀ ತೋ ಓನ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಫಿರ್ ತೋ. ಭಗವಾನ್ ನೆ ಜಗನ್ನಾಥ ದರ್ಶನ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಗಯೆ, ಲೇಕಿನ್ ಉನ್ಕಾ ತೋ ಪ್ರಚಾರ ಕರ್ನಾ ಥಾ, ತೋ ಸೋಚ ರೇ ಥೆ ಕೈಸೆ ಪ್ರಚಾರ ಶುರು ಕರು, ಕಿಸು ಕರು, ಕಹಾ ಸೆ ಶುರು ಕರು. ತೋ ಭಗವಾನ್ ನೆ ಆಪ್ನೆ ಲೀಲಾ ಸೆ ಕೆ ಐಸೆ ಆಚರಣ ಕಿಯೆ ಕಿ ಪಹಲೆ ದಿನ ಹಿ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಿಯೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ. ಸಾರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ಕಾ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಥಾ ನವದೀಪ್, ಗಂಗಾಕ್ಕೆ ಇಸ್ ಪಾರ ಮಹಾಪ್ರಭುಕ್ಕೆ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಥಾ, ಗಂಗಾಕ್ಕೆ ಉಸ್ ಪಾರ ಉನ್ಕೆ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಥಾ. ಬಹುತ್ ಬಡೆ ವಿದ್ಯಾನ್ ಥೆ, ವಿದ್ಯಾ ವಾಚಸ್ಪತಿ ಕೆ ಪುತ್ರ ಥೆ, ದೋ ಭಾಯಿ ಥೆ ವಿಶಾರದ ಪಂಡಿತ್ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ. ಉನ್ಕಾ ಅದ್ಭುತ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ವಾನ್ ವಿದ್ವತ್ತಾಕ ದೇಖ ಕರ್ಕೆ ಪುರಿಕ್ಕೆ ಗಜಪತಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಉನ್ಕು ವಹಾ ಸೆ ಬುಲಾ ಕರ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರ ಕೆ ಹೆಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ ಕೆ ದಾಯಿತ್ವ ಸೌಂಪೆ ಥೆ. ಬಹುತ್ ಬಡೆ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ದೇ ಥೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ಮಂದಿರ ತೋ ಬಹುತ್ ಪುರಾಣ ಮಂದಿರ, ಭಾರತ ವರ್ಷ ಮೇ ಸಬ್ಸೆ ಪ್ರಾಚೀನತಮ ಮಂದಿರ ಹೇ. ಜಿತ್ನೆ ಭಿ ಸಾಧು ಸಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಪೂರೆ ಭಾರತ ವರ್ಷ ಮೇ ಸಭಿ ಪ್ರಾಯ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ಜಿ ಪಾಸ್ ಗಯೆ ಹೇ. ತೋ ಇಸೆ ಬಹುತ್ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಮಂದಿರ ಕೆ ದಿ ಹೆಡ್ ಪ್ರಿಸ್ಟ್ ಕೆ ರೂಪ ಮೇ ಗಜಪತಿ ಮಹಾರಾಜ ಉನ್ಕು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಕಿಯೆ ಥೆ. ಉನ್ಕಾ ಇಸೆ ಯೋಗ್ಯತಾ ಭಿ ಥಾ. ತೋ ಜಬ್ ಪುರಿ ಮೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ ರಹತೆ ಥೆ, ತೋ ಲಗಭಗ ಭಾರತವರ್ಷ ಕೆ ಜಿತ್ನೆ ಬಡೆ ಬಡೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಸನ್ಯಾಸಿ ವೈರಾಗಿ ಸಬ್ ಜಾತೆ ಥೆ ಉನ್ಕೆ ಪಾಸ್, ಔರ್ ಉನ್ಸೆ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಕರ್ಕೆ ಉನ್ಸೆ ಟ್ರೇನಿಂಗ್ ಲೇ ಕರ್ಕೆ ಪಡ್ ಸಿಖ ಕರ್ಕೆ ಆತೆ ಥೆ. ಇತನೆ ಬಡೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಥೆ, ಬಡೆ ಬಡೆ ಸಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಸನ್ಯಾಸಿ ಭಿ ಜಾ ಕರ್ ಗೃಹಸ್ಥ ಥೆ, ಉನ್ಸೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ ಕರ್ತೆ ಥೆ, ಉನ್ಸೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ಸುನ್ತೆ ಥೆ, ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಪೂರೆ ರಾಜಾಕ ಭಿ ಬಡೆ ಸಮ್ಮಾನ ಭಾವ ಥಾ. ಇತನೆ ಬಡೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಪಂಡಿತ್, ಬಡೆ ಬಡೆ ಶಂಕರಪಂಥಿ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಲೋಕ ಆತೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಲೋಕ ಆತೆ ಉನ್ಸೆ ಸುನ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ ಪಢನೆ ಕೆ ಲಿಯೇ. ತೋ ಜಿತನೆ ಬಾಕಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಡಿತ್ ಸೇವಕ್ ಸಬ್ ಥೆ, ಸಬ್ ಉನ್ಕೆ ಪ್ರತಿ बहुत बड़ा श्रद्धा पूज्य भाव था कि यो दी नॉलेज लर्निंग पर्सन, सबका मन में ही भाव था। थे भी ऐसा, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं था, थे भी ऐसे शास्त्र विद्वान पुरुष थे। तो श्रीमन महाप्रभु सोचे कि ये सर्वाद्रुत पूरे राजा से प्रजा तक जिनका महिमा बिखरा हुआ है, ये ऐसे व्यक्तित्व है, अगर मैं उसको पटा दूं तो अपने आप एक रिटेल में होलसेल माल हो जाएगा, थोक में पूरे राज्य और इंडिविजुअल जाकर कितने पिक्चर करूं, किसको एक व्यक्ति को प्रचार करूं, वो अपने आप से पिष्ट हो जाएंगे। तो महाप्रभु ने पूरी पहुंच करके सर्वों को टारगेट किए और डायरेक्ट प्रचार नहीं किए। महाप्रभु का जब भी पिचिंग करते हैं, किसी प्रचार करते हैं, उनका यही सेम स्टाइल रहता है, केवल प्रचार करने का एक ही गुण अपनाते हैं, दैन्यता। इतने दीन हो जाते हैं, इतने झुक जाते हैं, इतने नम्र हो जाते हैं, तो उसके सामने सारे धन संपत्ति ज्ञान समझ सब झुक जाता है। हमेशा जब देखते हैं बहुत बड़े बड़े सिचुएशन में महाप्रभु का पिचिंग स्टाइल है, दीनहीन हो जाते हैं। बस साक्षात परमेश्वर होकर भी इतने दीनहीन हो जाते हैं, बस कमाल हो जाता है। हम देखते हैं जब बचपन में बालकपन थे, जब उनका प्रतिभा पूरे नवद्वीप में छाया हुआ था, निमाय पंडित के रूप से लोग जानते थे, उस समय भारतवर्ष में कश्मीर से तक्षशिला यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करके केशव ब्राह्मण नाम के एक व्यक्ति सरस्वती के कृपा पात्र, सरस्वती साधना करके इतने भारी विद्वान बन चुका था, भारतवर्ष के सारे सीमा में जाकर बड़े बड़े विद्वानों को चुनौती दे करके उनसे लिख करके सर्टिफाई करके लाता था, क्लिक कर दो मेरे साथ चुक्ति करो, जब मैं हार जाऊंगा तो मैं लिख कर दूंगा, आप हार जाएंगे तो सर्टिफिकेट दो कि मैं हार गया करके। और वो सरस्वती के वरपुत्र थे, सरस्वती साधना किए थे उन्होंने, सरस्वती उनको वरदान किए थे, तुझे कोई नहीं जानता, मैं तेरा कंठ में बैठ कर बोलूंगी। सरस्वती माता उनको वरदान दी थी केशव जी को कि मैं तेरे कंठ में निवास करूंगी, और जिसका कंठ से वागदेवी सरस्वती निकले फिर उनको कौन परास्त करे, हो ही नहीं सकता। सब एक एक डिबेट में परास्त होते थे सर्टिफिकेट कलेक्शन करके, और कहीं भी जाओ बड़े इंस्टीट्यूट में और उनको डिबेट में परास्त करके आप यहाँ से डिग्री सर्टिफिकेट लेकर आओ दी उनेर करके, तो आपको कैसे लगेगा, लगेगा भाई है, घमंड बढ़ेगा है ना, दब अहंकार और घमंड का बराबर पोषण होता जाएगा, अपोषण होता गया। बड़े बड़े नगर से दक्षिण से उत्तर सब घूम घाम करके काशी पहुंचे। काशी तो विद्या की नगरी, शुरुआत है विश्वनाथ की नगरी है, वहाँ भगवान शंकर के कृपा से बड़े बड़े पंडित, हमेशा काशी पंडिताई का स्थान है। तो वहाँ पहुंचे तो वहाँ के पंडित भिड़ गए, वो बोले हम सब शंकरपंथी मैंने विश्वनाथ जी के, तो काशी के पंडित भी हार गए उनके सामने, हार गए। तो बड़े भारतवर्ष में काशी का बड़ा नाम था, काशी के पंडितों का सामना किए, जब काशी के पंडित महासभा हार गया उनसे और उनको लिखित भी दिए देना पड़ा कि हम हार गए करके, तो उन लोग ने बोले बोले देखो हम तो हार गए लेकिन आपको अगर सचमुच दिग्विजय हम नहीं मानेंगे ना, क्यों ना, अगर आप नवद्वीप जा करके वहाँ विद्वानों को जीत कर आओ तब हम मानेंगे, क्योंकि आजकल हम सब बूढ़े हो गए, असली न्यायिक मीमांसिक पंडित तो नवद्वीप में पड़े हैं, सब भट्टाचार्य वहीं गए हैं, एक से एक विद्वान बैठे हुए हैं, अगर उन लोग को आप जीत कर न्याय मीमांसा में आप करा जाए तब हम उनको दिग्विजय, भारतवर्ष के दिग्विजय माने। तभी तक तो वो कई जगह से जीत चुका था, इतने उनके फॉलोअर हो चुके थे जी, जो जो एक एक पंडित महास्वामी जा करके बुरी तरह से जीत करके आता है, परास्त करता है सब लोगों को, सब लोग बोलते हैं अरे इतने बड़े विद्वान, तो उनके फॉलोअर हो जाते हैं, चमत्कार को नमस्कार, कोई देखते सब उनके फॉलोअर हो जाते हैं, होन करके उनके सामने लगभग हजारों संख्या में उनके शिष्य और छात्र समूह हो चुके थे। और जब इतने बड़े 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 इंस्टीट्यूशन को चैलेंज करके जाते हैं तो युक्ति जब होता है तो शास्त्र के आधार पर होता है, शास्त्र प्रमाण आदि देने के लिए। तब जमाने तो लैपटॉप नहीं था कि हार्ड डिस्क नहीं था, तो इसलिए हार्ड बुक्स लेकर जाना पड़ता था। तो बुक्स से कई सारे शास्त्र, अनेक पुराण शास्त्र उपनिषद सब लेकर के, तो कई हाथी घोड़े गधे ऊंट सब लगा रखे थे, पूरा होल लाइब्रेरी चलता था हमके साथ। हाँ, क्योंकि डिबेट में प्रमाण एविडेंस देना होता ना, जैसे वकील लाभ जाते हैं कितने उनके गाड़ी भर के पुस्तक ले जाते हैं, एक कोई केस दिखाने के लिए एक गाड़ी के पुस्तक ले जाएंगे, खोल खोल के दिखाते रहें। ठीक इसी प्रकार जो पंडितों के सामने डिबेट होता है तो शास्त्र प्रमाण ढूंढेंगे, तो शास्त्र लेकर चलना पड़ता था साथ में। और तभी जान में तो ट्रक लोड आदि नहीं था, नहीं तो दो चार ट्रक लेकर चलते पीछे, आजकल ट्रक लोड तो इसलिए वो पशु से लोड कर ले जाते थे, स्वयं हाथी से बैठ कर जाते थे, वो बाकी ऊंट खच्चर घोड़े जो लोड ले सके पीठ में, खूब लाइब्रेरी लोड कर ले जाते थे ग्रंथ पुस्तक। और हजारों फॉलोअर पताका उड़ा कर झंडा उड़ा करके नगड़ा बजा करके जयगान देते हुए चलते थे, दिग्विजयी महापंडित केशव काश मिर्की जय हो तो काशी विजय करने के बाद तो उनका घमंड शिखर तक पहुंच चुका था, होना ही चाहिए था, स्वाभाविक था, क्योंकि भारतवर्ष में काशी टप में रहता है। काशी की विजय किए, काशी के पंडितों ने लिख दिए, साइन करके सर्टिफिकेट देना पड़ा विचार में, क्या करें, बहुत दुखी हुए थे। भगवान शंकर को बोले आप क्या यार, हमको सपोर्ट भी नहीं किए, हार गए हम, लेकिन अब क्या करें, हारी तो गए, लिख के दिए थे, लेकिन यही उनका भरोसा था कि अगर अब नवदीप जय करके आते तो हम आपको फेस्टिवल करेंगे, आपके नाम से उत्सव करेंगे, नहीं तो नहीं, यही से जाओ। तो इसने पूरे बोला कि अरे मेरे सर्टिफिकेट पूरा जो भी होगा, जब मुझे ग्रांट कमीशन ग्रांट करे, ग्रांट होगा जब नवदीप से जीत करके आओ। तो वहाँ से चल पड़ा नवदीप विजय करने के लिए, बड़े मन में उत्साह लेकर के चला था। हजारों फॉलोअर्स है, हाथी घोड़ा लग करके बाजा गाजे बजा करके पताका झंडा उड़ा करके चला। तो पहला मैं जाके पहुँचूँ, इतना मैंने टाइम नहीं, जल्दी से आकर तो पहले से बुला के उनको प्रस्तुत रहने दो, मैं जाके पहुँचूंगा, फिर किसी पर रहूँगा, फिर उनको चुनौती दूंगा, वो इकट्ठा होंगे, तैयार करेंगे, करेंगे, टाइम बेकार जाता है, पहले उनको भेज देता हूँ लेटर और उन तैयार रहेंगे और मैं जाकर डिबेट करके आ जाऊँगा, हरा कर, हराना तो था ही। तो पहले वो लेटर लिखे नवदीप पंडित महासभा के लिए, तो उन लोग ने जब सुने, अपना जो अटैच कॉपी सब दिया था सर्टिफिकेट का, होता ना लेटर के साथ आपको लेटर भेजते हैं, सपोर्टिंग सर्टिफिकेट अपना पूरा बायोडाटा भेजते ना हर फाइल में, पूरा फाइल लगाकर भेजा था। तो उन्होंने सब देखे, बाप रे बाप, यहाँ से भी जीता, यहाँ से जीता, ये जीता, सब साइन कर, वो घबरा गए। पहले साहब बोले हम केवल पान चुबाते चुबाते ऐसे कुछ श्लोक पढ़ते पढ़ते गए, लेकिन ये पता नहीं क्या करेगा, सरस्वती के बरपुत्र है, जीतेंगे, उनको डर लगा। तो बोलेंगे काशी के पंडित भी हमारे ऊपर थोप दिए, अगर हम हार जाए नाक तो कटेगा हमारा, तो आपने को बेज्जत से अपमान से बचाने के लिए उन लोग ने सोचे कब क्या करें, वो तो आ ही रहा वो तो रुकेगा नहीं, आ रहा है, अब क्या करें, कौन भिड़ेगा उनके साथ, सब बोलते भाई हम तो नहीं, हम तो छुट्टी ले रहे हैं, सब छुट्टी एप्लीकेशन डालने लगे अपने अपने इंस्टीट्यूशन में, तो छुट्टी लेकर जाएगा दो दिन में आके पहुंच जाएगा, छुट्टी लेकर जाएगा, आजकल तो गाड़ी घोड़ा तो है नहीं, जल कर जाएगा, रास्ते में भेट जाएगा, तब क्या करेंगे, बुला लेगा तब। तो कौन उपाय नहीं देखने लगा, तो उन्होंने सोचे कि अब इमीडिएट क्या करें, उनसे बचने के लिए टाइम ले, भागने के लिए भी टाइम चाहिए। तो एक विचार उनके मन में आया, चलो ये निमाय पंडित है ना, ये सबको बड़े जीतता है, उनको भिड़ा देते हैं, फिर देखते हैं जो होगा। तो इसलिए उनको यही समझ में आया, तो एक लेटर लिखे सब मिल करके, देखो अभी हमारा साथ आप डिबेट करने के लिए आपका योग्यता अभी हुआ नहीं, यू आर नॉट दैट क्वालिफाइड टू फेस अस, हम इतने बड़े विद्वान हैं, नवदीप के मीमांसक है, आप हमारा साथ एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा आपको, हमारे साथ डिबेट करने के लिए व्हाट क्वालिफाई द एंट्रेंस। क्या एंट्रेंस है, हमारे छात्र है बेटा, छात्र बालक है, छात्र है, वो छात्र है जिसका नाम निमाई है, उनको डिबेट करके परास्त कर दो तो फिर हमारे पास अब हम आपका सामना करेंगे, नहीं तो हम ऐसे ही टाइम नहीं खराब करते। वो उनका आशा था कि निमाई जीत जाएगा, वो कभी ऐसा नहीं किए थे, वो जानते थे उसका ऐसा नहीं थे, लेकिन फिर क्यों ऐसे लिखे, ये लिखने का ये कारण था, आशा था कि निमाई उनके साथ भिड़ जाएगा, उनको भरोसा था कि निमाई कुछ छोटा मोटा विद्वान नहीं, हमारा नाक बंद करता है, ऐसे ऐसे प्रश्न युक्ति करके उनको इसे पानी पिला के रखता है, बोलता है वो तो कुछ समय तक तो झेल लेगा उसको, इतने में हम बड़ी मित्र भाग भाग जाएंगे, हम ये नवदेवी छोड़ करके भाग जाए, अपने अपने बंधु कुटुंब घर में चले जाएंगे छुट्टी लेकर के, पाएंगे नहीं, एब्सेंट है और क्या कर वापस आएगा, इसलिए आपने इज्जत बचाने के लिए यही उपाय विदा था, वो अपने वेडिंग मिस्टर लेकर चल पड़ने भी थे सब, भले जैसे पहुंचे निमाय के पास हम भाग जाएंगे सब, सब स्कूल में एप्लीकेशन छुट्टी लग गया, छुट्टी के लिए सब भाग जाएंगे, पहले सब स्टूडेंट को बोल देते वो छुट्टी है 4 दिन तक हम कोई सीख लीव जो भी लीव लेकर सब अपना चलने करते आए थे। अब जब लेटर पहुंचा दिग्विजय के पास, केशव के पास, उनको लगा क्या, अरे नहीं उनके समान नहीं, इतने बड़े बड़े पंडितों का सामना करेगी, इतने बड़े हो गए ये, पहले अब एक स्टूडेंट के साथ डिबेट करना पड़ेगा, मतलब कहीं मुझे ऐसा नहीं किए थे, ये क्या है छात्र के साथ, चलो देखते हैं, उनको भी बड़े चैलेंज लगाओ। तो उनने फिर निमाय के केवल नाम आया था, नाम से किसे पहचानेंगे, आजकल से ना फोटो भेज देते हैं आईडी प्रूफ के साथ, ढूंढने में परेशानी हो जाता है ना, फोन नंबर ईमेल सब देने से दिक्कत नहीं होता ढूंढने में, तभी तो ऐसा कुछ था नहीं साधन, केवल नाम से दिए थे, तो उनको ढूंढ करके निकालना पड़ा था निमाय को। तो उन्होंने वो नवदीप जाकर गंगा किनारे पूछने लगे निमाय, तो कुछ लोग बोले इस समय तो गंगा किनारे बैठा होगा, हर दिन शाम को गंगा जी के पुलिन में बैठता है, उनके साथ उनके गोष्ठी होते हैं, बैठ करके वहाँ शास्त्रार्थ करते हैं। तो उन्होंने पता लगा कर लोगों से गंगा किनारे पहुँचा, तो वहाँ पहुँच करके देखा कि सचमुच 50-100 लड़कों यंग लड़के बैठे हैं, उनके स्टूडेंट थे सब, और निमाय उनके पास बैठ करके शास्त्रार्थ कुछ शास्त्र चर्चा कर रहे हैं, गंगा किनारे शाम के समय है। स्वयं इतने बड़े विद्वान, उन्होंने देखे वो बच्चे लोग मेरी बाप रे बाप, बड़ा प्रोसेशन आ रहा है, बाजे गाजे बज रहा है, झंडा उड़ रहा है, स्लोगान चल रहा है, और बहुत बड़े पार्टी कौन आ रहा है, क्या है पता नहीं, कोई आ रहा है गंगा किनारे स्नान करने आए हैं, एक मेला है, क्या है जो भी हो। तो वो लोग देखे ये बालक लोग बैठे, तो उन डाउट के लोगों से पता लगे, बोले यहीं में इसी में है निमाय, इसी में होगा। तो एक व्यक्ति को उन्होंने भेजा, वो लेटर लिख करके भेजा निमाय के पास, आकर पूछा करो अगर इसमें कोई निमाई है तो उनको मेरा ये लेटर दो, ये सबने भेजा। तो उनका प्रतिनिधि गए जा करके उन बालकों से पूछे, भाई निमाय पंडित यही बैठा है सामने, सामने बैठे थे सब छात्र लोग बैठे, जा करके उनको पत्र दिए, निमाय ने तुरंत पत्र पढ़े, पत्र में दिए थे कि मैं अपना आइडेंटिफिकेशन दिए थे, मैं सुवर्णशु हूँ और आपसे मैं शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ, गेट रेडी, यही चुनौती पत्र लिखे थे। तो उसको निमाय पंडित ने पढ़ करके देखिए, भगवान के सबसे पहला स्टूडेंट कैरियर में एक बड़े दिग्विजय पंडित के सामना करना होता है, कैसे टैक्टिक्स अपनाए महाप्रभु। जैसे लेटर चुनौती पत्र आया उनके पास में, तुरंत लेटर लेकर खड़े हो गए, उन जो लेटर वहां का पत्र वहां का आया था उसी को ही सम्मान की, बोले जाइए मैं, और वो ये लिखा है कि वो भारतवर्ष के दिग्विजय है, मैं तो एक छोटा सा स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ शास्त्र तो करेंगे, ये तो समीचीन नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो आए हैं अवश्य मैं उनका दर्शन करके अपने को सौभाग्यवान मानूंगा, मैं अवश्य उनका दर्शन करना चाहता हूँ। ऐसे बात कह करके भेजे पत्रवाहक को, वो जाकर के जो कहा वो खुश हो गया, बोला लड़का बड़ा अच्छा है, अच्छा लड़का मिलना चाहिए मुझे, गुड बॉय। तो उनके पार्टी के साथ आए, सारे लोग आए, और जो बात उन्होंने भेजे थे कि मैं साधारण एक छोटा सा बालक छात्र हूँ आपके साथ मैं क्या शास्त्रार्थ करूँ, तो इनमें से बोलेंगे हाँ मेरे बेटा के समान तो है, वो क्या करेगा, चलो नेग्लेक्ट मूड में उनके पास आए, अपने घमंड उनका साथ ही था और वो तो सरेंडर पहले से कर चुका है कि मैं आपके समान नहीं हूं, आपका नाम निमाई है जी, मैं ही निमाई। ये नवदीप के सारे पंडित महासभा मुझे इसी कहें कि आपके साथ ना पता नहीं, मुझे तो नहीं पूछे, मैं तो उनका छात्र हूं, आप इसे दिग्विजय पंडित आपके साथ मैं कैसे करूं ना, फिर आप लोग भी हैं ना, आपको लगता है मैं आपके साथ योग्य हूं आपके साथ शास्त्र युक्ति करने के लिए, मुझे तो नहीं लगता, आपको नहीं लगता मुझे भी नहीं लगता, आप कैसे युक्ति करें ना, लेकिन उन लोग ने बोले तो आप कुछ साथ साथ करो मेरे से। अरे देखो आप इतने बड़े विद्वान पुरुष हैं, ऐसे बड़े आपके फॉलोअर हैं, इतने बड़े डिग्री हैं, मैं तो आपके बेटा के समान हूं, मैं क्या आपसे शास्त्रार्थ कर दूं, लेकिन एक अनुरोध मैं करूं अगर आप कृपा करके स्वीकार करें तो, ना पता बताओ क्या बोलना। बड़े नम्र भाव से हम्बल होकर के पूछे कि अभी सायंकाल है, सूर्य अस्त हो रहा है, गंगा जी के पुलिन पर हम पधारे, आप पधारे, हम भी आए हैं, तो क्यों नहीं गंगा जी के संध्या वंदना किया जाए, आप जैसे विद्वान पुरुष हैं सभी के सामने गंगा जी के सायंकालीन स्तुति किया जाए, हम भी थोड़ा सुनेंगे। ओह और खड़े हो, अच्छा आप चाहते हैं कि मैं गंगा की संध्या स्तुति करूं, यहां संध्या वंदन कीजिए। तो थे दिग्गज पंडित, आप हाथी से उतर के खड़े होकर प्रणाम करके से गंगा जी को प्रणाम की, गंगा जी को प्रणाम तो करना ही है, प्रणाम करके श्लोक पढ़ने लगे स्तुति में। ऐसे ऐसे श्लोक आम तो है, श्लोक इसे प्रिंटेड है हिंदी में लिखा है मेरे सामने, फिर पढ़ने के लिए दांत लग जाता है, पढ़ ही नहीं पाते, अनाउंस नहीं कर पाते उसका अर्थ तो पता नहीं, अर्थ पता तो कर ही नहीं सकते, उच्चारण मात्र नहीं कर पाते। और इसे श्लोक को कंपोज करना, उसके अलंकार जमक देना, एडिट करना, और फिर सद्य प्रसिद्ध माने इमीडिएट श्लोक को बना करके उसको बोलना, ये तो, और उन्होंने इसे सामर्थ्यवान थे, तुरंत वायु वेग से 100 श्लोक रचना करके तुरंत पढ़ ला लेगा अलंकार चमक के साथ, बिल्कुल छंद के साथ उसको सुन, एक से एक श्लोक जो उच्चारण करते थे निर्भुल भाव से, बिल्कुल जो उनका उच्चारण का स्टाइल था, जिस प्रकार व्याकरण के संगत था, जिस प्रकार शब्द विन्यास था, उसको सुन करके उनके पार्टी के लोग तो पैर से 1 फीट ऊपर ऊपर जा रहा था, ऐसे हैं देखा हमारे गुरु जी कैसे हैं, पता चलता ना नहीं टोन कैसा है, वार्डिंग कैसा है, ऐसा है, और सचमुच ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं था। और बाकी जो स्टूडेंट कम्युनिटी थे वो तो हक्का बक्का देख रहे थे, बाप रे बाप, सो लड़े इतनी बड़ी विद्वान हुई है, तुरंत तुरंत इसी इसी श्लोक रचना कर लिया जाता है। तो 100 श्लोक गंगा जी के स्तुति के करके बोले, बोल करके खड़े बोले संतुष्ट, निमाय पंडित बोले आपके जय हो, आपके अलावा कौन ऐसा है विद्वान जो ऐसा कर सकता है, क्या भाषा है, कैसे स्तुति है, किस प्रकार गायन किए, कितनी जल्दी से आपने किए, धन्य है आप, सचमुच आप सरस्वती के वरपत्र है, खूब उनको बढ़ाई के तो और भी लगा के ऐसे बढ़ाई करके बोले, लेकिन 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 थोड़ा सा भूल तो सभी का होता है, ऐसा बात है और निर्भूल होता, बट मेरे रचना में भूल ना, कुछ भूल है, एक तो होता तो चल जाता, कुछ तो मिस्टेक है, समझ नहीं पाया क्या बोल रहा है आपने, मिस्टेक मेरी रचना मिस्टेक हो कैसे सकता है, मैं तो मैं नहीं बोल रहा हूं, तो सरस्वती की वाणी है, इसे मिस्टेक हो कैसे सकता है, चैलेंज किए क्या मिस्टेक बता सकता है, वो तो सोच रहे थे मैं इमीडिएट बोला, फटाफट श्लोक उच्चारण किया, वो याद भी थोड़ी रखा होगा, क्या बोलेगा, बोलते मिस्टेक पकड़ेगा, नहीं उनको उनको क्या पता था कि सरस्वती के बाप भी वहीं बैठे हैं तो उन्होंने बोले कि आप अगर कृपा करके मुझे अनुमोदन करते हैं तो मैं बताऊं। ना बताओ, तू क्या बताएगा, बोलो वही नहीं, तू क्या बताएगा, बताओ। तो एक श्लोक पढ़ने लगे, 100 श्लोक से बीच में एक श्लोक सुन चुन करके पढ़े। तो श्लोक सुन करके हैरान हो गया, बोले किसी याद कर लिया यार, किसी याद कर लिया, इमीडिएट सुनते ही, फोटोग्राफी मेमोरी है उसका, जो भी हो याद कर लिया। लेकिन मिस्टेक क्या है उसने? तो महाप्रभु ने मिस्टेक बोले उनको, कई मिस्टेक और भी था, एक ऐसे मिस्टेक उनको बोल दिए सभी के सामने जो सभी को ही लगा ये मिस्टेक है, जितने से बाकी तो सब व्याकरणिक मिस्टेक था, टिपिकल मिस्टेक, तो सभी के बुद्धि में समझ में नहीं आएगा। लेकिन ऐसे मिस्टेक जो सभी का समझ में आएगा, एक मिस्टेक उन पहली बार बोले उनको, बोले देखिए आप ये जो ये बीच वाले वर्ष में आप बोले हैं गंगा जी के लिए कि भवानी भर्तुम, भर्ता शब्द का अर्थ क्या है? स्वामी भरण पोषण करता, पति या स्वामी को भर्ता भी कहते हैं। गोपी भर्तु पद कमले और गोपियों के भर्ता पति, तो भवानी शब्द का अर्थ है भव के पत्नी, भवानी, भवानी माने भव के पत्नी, भव माने शिव की पत्नी है पार्वती, भवानी माने पार्वती, भव के पत्नी पार्वती है। बोले आपने भवानी शब्द भी कहे, उनके साथ कहे भवानी भर्तु, मतलब भवानी के पति। तो थोड़ा सोचिए, भवानी के शब्द का अर्थ होता है भव के पत्नी, भव के पत्नी के पति, कैसे सुनने में लगता है? इसका मतलब भव के पत्नी का कोई सेकंड पति है क्या? और क्योंकि भव के पत्नी तो मतलब भव की पत्नी है ये, फिर उनको पति कहने का क्या मतलब? पति तो उनको ऑलरेडी नाम ले चुका है, तो मतलब कोई उपपति है क्या उनका? अरे बाप रे बाप, अब भी दिमाग में आया, इसे किसे बोल दिया मैंने? भवानी भक्त मतलब भवानी मीन्स शिव की पत्नी, शिव के पत्नी के पति ने ऐसा किया, ये तो गड़बड़ है। शिव की पत्नी के पति कैसे कहा? शिव की पत्नी तो शिव की पत्नी, फिर शिव की पत्नी के पति मतलब शिव के छोड़कर और कोई एक्स्ट्रा पति है? अब दुर्गा जी के कोई ऐसा दूसरा पति बोल दें तो हरी बंडे उनके लिए। तो ये बात को सुनकर तो बिल्कुल समझ गया कि ब्लंडर मिस्टेक हो गया, कैसे हो गया ये? आप दोनों पक्ष के लोग तो सब जानेंगे कि मिस्टेक है ये, इसमें से बिल्कुल ब्लैक फेस हो गया उनका। हाँ, अभी गंगा का किनारा था, शाम के समय था, गंगा जी के पानी ठंडा, जानते हैं किसी ठंडा हवा चल रहा था, बिल्कुल शीतल समीर, लेकिन इतनी ठंडी हवा, शाम के समय में पसीना उतर गया पसीना, 105 टेम्परेचर तक पहुंच गया। बाप रे बाप, ए मिस्टेक है। और उनके साथ साथ बोले कि कोई बात नहीं, ये तो केवल और कुछ मिस्टेक है, फटाफट बताता गए, 10-5 और बता दिए। तो उनका तो समझ लगा कि मेरे पैर के नीचे धरती निकल गया है, सर चक्कर खा रहा है, स्थिति ऐसे गंभीर हो गया उनका। तो इस स्थिति में जो महाप्रभु के साथ जो छात्रगण थे, उन्होंने देखे कि इतने बड़े भारी पंडित का बुरी तरह से हमारे निवाई ने परास्त कर दिया उसको, तो उनके पार्टी जीता तो ताली मारने वाले थे, हंसने वाले थे, लेकिन वो ताली शुरू करने थे कि महाप्रभु उनको रोके, बोले ऐसा मत करो, ये ऑलरेडी उनके लिए ओवरडोज हो चुका है, उसी के संभाल नहीं पा रहे, अब ताली बजा कर हंस देंगे वही मर जाएगा, स्पॉट डेथ हो जाएगा उसका, वो उसको संभाल नहीं सकता। इतनी बड़ी विद्वान के एक छोटे से बालक के सामने बेजीत पराजित हो जाना, खड़े खड़े गंगा किनारे को स्टेज लगाकर होता कुछ होता तो कितनी बड़ी मस्जिद है उसका, तो उसको ही कैन टेक इट, मतलब ऐसे बहुत बड़ी भारी डोज हो गया उनके लिए, तो इसलिए ताली मत बजाओ। तो महाप्रभु ने उनको खूब प्रशंसा और की, बोले नहीं नहीं, भूल किसका नहीं होता, एरर इज टू ह्यूमन, मनुष्य मात्र में ही गलती होता है, तो ऐसा कोई बात नहीं, अब कल आइए, अब रात अधिक हो गया, विश्राम कीजिए, कल बात करें। तो मैं कहने का आशय था कि महाप्रभु सबसे प्रथम अपने जीवन में, छात्र जीवन में, एक बड़े विद्वान व्यक्ति को सामना किए शास्त्रार्थ के लिए, तो उपाय यही था, वेरी दैन्य, वेरी हम्बल एटीट्यूड लेकर के गए और ऐसे हम्बल एटीट्यूड में उसको आउट किए। दूसरी उनका पल्ला पड़ा था बहुत बड़ा विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ, उनके साथ भी भगवान ने स्टूडेंट बन गए उनके साथ। वो तो पहले जब देखा सन्यासी करके, इतने महाप्रभु का रूप इतने सुंदर था, इतना तो चाहता था, इतने बढ़िया लड़का है, सन्यास लिया कैसे, कहाँ का है, क्योंकि जब वो प्रणाम किया सन्यासी समझ करके, वो गृहस्थ थे, नमो नारायण करके प्रणाम किया, महाप्रभु ने कृष्ण मति रस्तु, बोला कुछ गड़बड़ी है। महाप्रभु जो सन्यास ले थे पहले बार, शिखा सूत्र त्याग दिया था, महाप्रभु का ना कोई तिलक था, ना कंठी था, ना शिखा था, ना जनेऊ था, कुछ नहीं था। तो इसलिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट कौन सा संप्रदाय है, कि क्या सन्यासी को पता नहीं चलता था, डंडा तो धारण किए सन्यासी तो है व्यस्तपन, लेकिन किसी संप्रदाय को पता नहीं, क्योंकि कोई तिलक फिलक नहीं था, ना ऐसा ना ऐसा, कुछ भी नहीं था। अगर ऐसा होता तो सार्वभौम भट्टाचार्य से विद्वान इमीडिएट पता लगा रहे थे इस पंथ के, यानी उनको पता नहीं चला। तो वो समझे थे सन्यासी कुछ नहीं, मतलब महावादी सन्यासी होंगे, ये समझ करके सारे सन्यासी में आते थे, नमो नारायण करने से वो भी नमो नारायण उत्तर देते थे, उनको नमो नारायण कहे तो कृष्णमति रस्तु बोले। सार्वभौम बोले तो गड़बड़ है, लगता है कि वैष्णव सन्यासी, कृष्ण कृष्ण का नाम कोई शंकरी सन्यासी नहीं बोल सकते, नाम नहीं ले सकते, बहुत जोर लगाकर बोलेंगे तो परमात्मा बोलेंगे, नाम तो नहीं ले सकते, ही सीधा बोलता कृष्ण मति रस्तु, नहीं तो वैष्णव सन्यासी, लेकिन तिलक कंठी ये सब कैसे नहीं है। तो डाउट करके पूछे गोपीनाथ को, अपने साला को पूछे, आप जानते हैं, हम जानता हूँ खास, कौन है क्या, अरे वो तो नवदीप के, नहीं नवदीप के अपने गांव वाला है, हाँ अपने गांव वाला, किसका के, तो जगन्नाथ मिश्र के, जगन्नाथ पुरंदर का बेटा है। अच्छा जगन्नाथ मिश्र मेरे पिताजी के मित्र है, वो विशारद के मित्र थे, हाँ वही है। तो आपने गांव वाले आपने परिचित सुन करके और उनको अच्छा लगा, और मिश्र ब्राह्मण, ब्राह्मण परिवार के, वो इतने कुलीन ब्राह्मण नवदीप का है, पुरंदर पंडित के ये है, विशारद पंडित अपने पिताजी के संपर्क, बहुत खुश हो गए। बोले लेकिन इतने कम उम्र में कैसे ले लिया, पता नहीं किसी क्या कौन सा संप्रदाय जी लिया, ना वो काटवा में जा करके कैसे भारत से, भारती से लिया, ये लड़का हमारे गांव का पुरंदर मिश्र का लड़का भारती से लिया। चलो कोई बात नहीं, सारा समझा, अब मेरे पास आए मैं अप टू डेट कर दूंगा उसको, उसको हाईग्रेड कर दूंगा, अब कोई बात नहीं, अब मुझे उनको कुछ दोनों बच्चा है अभी जानता नहीं धर्म कैसे रक्षा करेगा, मैं उसको थोड़ा ट्रेनिंग दे करके अगर वो चाहे तो उसको पूरी गिरी में ले आऊंगा, हाईग्रेड कर लूंगा उसको। तो गोपीनाथ ने सुन करके उनको बोले बोले तू मूर्ख तू क्या करेगा उसको, थोड़ा बहुत उनको चुप्पि हुआ, गोपीनाथ ने अपने तरह से खूब डांट कर बोले तू मूर्ख है, तू नहीं समझ रहे हो, तू साक्षात ईश्वर है वो है, लेकिन वो कहां के माने, साक्षात भगवान उनके घर में 9 घंटा तक बैठे रहे, वो हवा किया रुई किया खिलाया पिलाया प्रणाम किया, लेकिन भगवान को नहीं समझ पाया, 9 घंटे तक उनके घर में रखा, उनको प्रसाद खिलाया, उनके साथ बातचीत किया, सेवा किया, फिर भी नहीं समझ पाए कि भगवान है। और भगवान के भक्त नित्यानंद जी प्रभु उनके घर में सर्वदा के प्रसाद खाए, गोपीनाथ आचार्य उनको युक्ति के गाली देकर समझा रहे, मूर्ख तो देखा नहीं, ये सारे सात्विक विकार लक्षण किसे संभव हो सकता है, तू समझ ना, समझ रहा था आश्चर्य लग रहा था, लेकिन ये कलयुग में ईश्वर ही कैसे हो सकता है, ना ईश्वर तो नहीं हो सकता, थोड़ा तो डाउट लगता है लेकिन ईश्वर तो नहीं नहीं मान सकता हूं। गोपीनाथ जी तभी बोले थे ये तेरे दोष नहीं है, शास्त्र से इसे कहते हैं कि शास्त्र पढ़ करके केवल अपने विद्वान के बल से कोई भगवान को जान ले ये हो नहीं सकता। तो सार्वभौम चैलेंज के लिए अच्छा शास्त्र पढ़ करके शास्त्र ज्ञान से भगवान को नहीं जानते वो कैसे जानेंगे, अनपढ़ गवार जानेंगे, नहीं जानता हूँ बात करते नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्र में ऐसे लिखा है कि शास्त्र ज्ञान से ईश्वर को नहीं जान सकता, फिर कैसे जान सकते, न केवल ईश्वर की कृपा से ही ईश्वर को जान सकते। जैसे सूरज उगते हैं डेली, सूरज को देखने के लिए कोई दूसरा लाइट उपयोग करके देख सकते हैं, जैसे सूर्यास्त हो गया रात को बहुत हाई पावर सेल टॉर्च डाल करके सूरज को देख सकते हैं, बड़े पावरफुल लाइट किसी लाइट से नहीं, सूरज को देखने के लिए केवल सूरज का ही रोशनी से देख सकते हैं और कोई रोशनी हेल्प नहीं कर सकता। सूर्य को केवल सूर्य के आलोक से देखा जा सकता है, इस तरह भगवान को केवल भगवत कृपा से ही जाना जा सकता है। तो सर्वम बड़ी बड़ी बात करता है, भगवान कृपा मेरे ऊपर है नहीं, मैं हेड पुजारी हूँ भगवान जगन्नाथ मंदिर का, मेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं, तेरे ऊपर कृपा है, व्हाट प्रूफ, क्या प्रमाण है ना, प्रमाण यही है कि तू भगवान को सामने बैठे समझ नहीं पा रहा, और क्या प्रमाण हो सकता है। तो ऐसे पुरुष को सार्वभौम को महाप्रभु ने भक्त बनाना था, उनको टारगेट में ले लिए थे पहले से, इसलिए उनके घर में गए, 9 घंटा तक रहे सार्वभौम को, केवल अपना रूप दिखा करके उनको फंसा दिए। दूसरे दिन सार्वभौम पंडित जगन्नाथ मंदिर न जा करके महाप्रभु जहाँ थे वहीं गए, बोले आप दर्शन कर चलेंगे, चलो मेरे साथ में ले जाता हूँ दर्शन कराते, स्वयं साथ में लेकर दर्शन कराया, माला दिया, प्रसाद दिया, अकेले में बुला कर घर में बुला, बोला देखो तुम संन्यास तो ले लिए, कम कम उम्र में ले लिए, मेरा बहुत डाउट है इतने कम उम्र में संन्यास लेकर के अब मेंटेन नहीं कर पाओगे, है ना, तो इसलिए क्या बात ना, मैं आपको थोड़ा वेदांत आदि शिक्षा देकर के पक्का ट्रेंड अप करना चाहता हूँ। तो महाप्रभु बोले बोले हे आचार्य, आप जानते हैं मैं पूरी आने का क्या मेरा लक्ष्य है, ओनली वन एजेंडा, एक ही उद्देश्य लेकर मैं पूरी आया था, ना क्या, ना केवल आपको मिलने के लिए, मुझे पता चला था नवदीप से पता चला था भारतवर्ष में एक ही पुरुष है जिनके शिक्षा से कोई धर्म में अड़िग रह सकता है, आपका नाम सुना था, तो इसलिए मैं पूरी केवल आपके पास आया, आप मुझे कृपा करके, आप मेरे पिता है, आप मेरे गुरु है, आप कृपा करके मुझे आप समझा दीजिए, संभाल दीजिए, तब मैं मेंटेन कर लूँ। ऐसे कहे उनको सार्वभौम भट्टाचार्य तो समझा कि ओ सो नाइस ओबीडियंट स्टूडेंट, आज तक मैं कितने टीचरशिप किया, ऐसे स्टूडेंट तो मेरे पल्ले में। तो स्टूडेंट एप्लीकेशन करते हैं, जमा करते हैं पैसा, वो उनको गुरुजी ने सुनो स्वयं बुला ली, सार्वभौम भट्टाचार्य बोले चलो 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 आप तो मेरे लिए आए थे, मैं आज ही आपको पढ़ाना सुनूँ, हाँ कृपा करके आप जैसे चाहें, स्वयं बुलाकर लेकर कोई डेट फाइनलाइज करे कि कल से ग्रंथ पढ़ाना शुरू करेंगे, कुछ कोई डेट फिक्स नहीं, कुछ नहीं, बोले आज ही से शुरू कर देते हैं, आपने तरफ से सब व्यवस्था करके उनको बैठा करके और उनको पढ़ाना चालू कर दिया, वेदांत पढ़ाना चालू कर दिया। 7 दिन तक परमेश्वर भगवान महाप्रभु सार्वभौम पंडित के सामने बैठ करके ऐसे विनम्र छात्र बने कि सार्वभौम हैरान होता था, ही वॉज वेरी एक्सपीरियंस्ड ओल्ड टीचर, कई ब्याच के स्टूडेंट उनसे गए हैं, लेकिन आज ये जो एक स्टूडेंट आया, कैसे एक मुद्रा में एक आसन से बैठा है, कभी झपकते नहीं लेता, अटेंटिवली सुनता भी है। तो सार्वभौम पंडित ग्रंथ पोथी पढ़ाते थे, बार उठ के देखते थे तो उनकी इतनी प्रसन्नता होता था कि वाह क्या स्टूडेंट है यार। सही में जो टीचर हैं उनको पता है, अगर कोई एक्सपर्ट स्टूडेंट मिल जाए जो जो पढ़ाता है तुरंत ग्रास्प करे, वेरी अटेंटिव है, वेरी ओबीडियंट, दे विल फील रियली प्राउड, बहुत गर्व अनुभव करेंगे। तो सार्वभौम पंडित ऐसे मानते थे अपने आप, बहुत बोलते थे कि ऐसे स्टूडेंट। अब 7 दिन तक पूरा वीकेंड तक कंटिन्यूस पढ़ाते गए, अब स्टूडेंट का तो डाउट नहीं हुआ, टीचर का डाउट आया डाउट टीचर का आया, स्टूडेंट का डाउट नहीं, टीचर का डाउट क्या आया? अरे 7 दिन तक बोलते जा रहा हूँ, समझ रहा ना नहीं, कुछ ऊंचू तो कुछ बोलता भी है नहीं, सोता भी नहीं है, अटेंटिवली बैठा है, बिल्कुल सब सुनता है, कुछ समझ में आ रहा है नहीं, कुछ नहीं बोल रहा। तो ये शंका करके टीचर महाशय ने पूछे, शिक्षक महोदय ने पूछे कि चैतन्य मैं जो बोल रहा हूँ वेदांत दिन पढ़ा तो समझ में आ रहा ना? वो आशा करते थे कि इतने अटेंटिव सुना बोलेगा क्या, समझ कुछ तो बोलेगा, अच्छा समझ में आया, ये थोड़ा को मिस्टेक, लेकिन बड़े नम्र भाव से आशा कुछ किए थे कि बड़ा पॉजिटिव आंसर आएगा, ऐसे पूछे कि चैतन्य 7 दिन से मैं इतने पढ़ा रहा हूँ, पूरे परपट कितना बढ़िया दे रहा हूँ, इलाबोरेट परपट, और आपको समझ में आ रहा है? बड़ा खुश होकर के बड़े प्रसन्नता से आशा रख करके पूछे। पूछते ही महाप्रभु बोले, पंडित जी आप धन्य है, बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन 7 दिन से अभी तक कुछ भी नहीं समझ में आया मेरा। उनका फ्यूज इमीडिएट डाउन हो गया, अरे कैसा स्टूडेंट है यार, अबे इतना बेवकूफ स्टूडेंट है ये, अरे तो समझ में नहीं आ रहा है, पूरा हफ्ता बीत गया तो पूछता भी कि नहीं, समझ नहीं तो बोलता कि नहीं समझ में आ रहा। मैं आपको मन में कितनी प्रशंसा कर चुका बेफ्यूज, बेफ्यूज में इतनी प्रशंसा कर चुका हूँ, तू ऐसे नालायक निकला। 7 दिन बीत गया तू बोलता भी नहीं है, कि समझ में नहीं आ रहा है, कि पूछता भी नहीं है, बैठ के अटेंटिवली सुनते जा रहा है, ये क्या है? शिक्षक कंफ्यूज हो गया, बोले ये कैसा स्टूडेंट हो तू रे, पहली बार पल्ले पड़ा ऐसा स्टूडेंट का, फर्स्ट टाइम ऐसा स्टूडेंट देखता हूँ, इतने ओबीडियंट, इतने विनम्र है, और समझ में नहीं आ रहा, कुछ बोलता भी नहीं, कंफ्यूज हो गया टीचर महाशय। महाप्रभु का ही स्टाइल था, इतने हम्बल, इतने दयनीय हो जाएं ताकि उनको वहीं से पट ले, इस दयनीयता से उनको जीत ले, सारे जीत कर अलाउड कर देना, केवल दयनीय भाव से सर्वों को ही जीत लिए थे। अब जब भी काशी के पंडित में महाप्रभु का पल्ले पड़ा था प्रकाशानंद से, वो भी यहीं इतने हम्बल हो गए उनको जीते। तो उनके जो गोस्वामी गण को उन्होंने वृंदावन भेजे थे, उनमें से एक अन्यतम गोस्वामी थे, मैं बताया था जिनका नाम श्री गोपाल भट्ट है, दक्षिणात्य में जिनका आविर्भाव है, उनके पिता के नाम था श्री वेंकट भट्ट। श्री रंगनाथ जी के मुख्य पुजारी थे, 3 भाई थे, वेंकट भट्ट, पेरुमल भट्ट, तिरुमल भट्ट। 3 भाइयों से एक भाई तो श्री संप्रदाय के सन्यासी थे, पेरुमल भट्ट जो थे उनका नाम प्रभुदानंद सरस्वतीपाद हो गया था, और 2 भाई थे गृहस्थ, बड़े भाई के बेटा थे, केवल 12 साल की उम्र था उनका, नाम था गोपाल। महाप्रभु नीलाचल से सार्वभौम विजय करने के बाद दक्षिण भारत भ्रमण में गए। दक्षिण भारत भ्रमण करते करते कावेरी नदी के पास पहुंचे, कावेरी स्नान किए, कावेरी के बीचों बीच टापू में श्री रंगनाथ मंदिर स्थित है। श्री रंग जी मंदिर को देख करके बड़े उत्साहित हुए, बहुत पुराना भव्य मंदिर है, श्री रंग जी का दर्शन है। तो कावेरी स्नान करने के बाद वहीं से उठ करके आए, कावेरी किनारे है मंदिर, तो आकर के मंदिर आजकल जैसे श्रीरंग मंदिर आप गए होंगे, केवल लोहे का रेलिंग भरा हुआ है, 4 घंटा लगा दर्शन करने के लिए, तो 1 मिनट में नहीं निकाल लगा, केवल लाइन करने के लिए, टिकट लेने के लिए इसे रेलिंग भर पड़े, तभी ऐसा कुछ नहीं था, पूरा आंगन खुला था, भगवान के दर्शन जैसे करना है कर सकते हैं। तो चतुर्मास के समय था, अनेकों दर्शनार्थी आसपास से आते थे रंग जी के दर्शनार्थ, 1000 संख्या में दर्शनार्थी आए, और महाप्रभु का तो स्टाइल है, जिस मंदिर में जाएंगे मंदिर के सामने विग्रह को दर्शन करते ही नृत्य कीर्तन शुरू करते, नाचेंगे गाएंगे, यही तो उनका स्टाइल था। हमारे इस्कन वाले ही फॉलो करते हैं। तो महाप्रभु जा करके आंगन, विशाल आंगन था रंगा जी के सामने, और नृत्य और कीर्तन शुरू कर दिए। जैसे सुबह सुबह जा करके उनके दर्शन नृत्य कीर्तन किए, तो जितने दर्शनार्थी और आते थे और मंदिर की ओर जाना भूल गए, रंग जी को दर्शन करना भूल ही गए। उनको लगा होना हो साक्षात रंगनाथ तो नाच नहीं रहे, क्योंकि महाप्रभु का रूप इतने आकर्षित था। आजानुलंबित भुजम कनकावदातो, इतने लंबे लंबे हाथ, सोने जैसे चमचमाते हुए शरीर के रंग, ऊर्ध्वभाव होकर के कीर्तन के साथ नाम के साथ जो नृत्य कर रहे हैं, ये सोते हुए भगवान को कौन देखेगा? रंग जी सोते रहते ना, ये स्लीपिंग गार्ड, ये डांसिंग गार्ड, डांसिंग गार्ड तो डांसिंग गार्ड है, सामने नाच रहे हैं, तो कौन जाए उनको देखने के लिए? पूरे भीड़ इकट्ठा आंगन में हो गए। इतने भीड़ आंगन में इकट्ठा हो गया, पुजारी बोलता है क्या इस समय तो दर्शन का दर्शनार्थी का समय है, यह भीड़ इतने उमड़ पड़ता था, आज पूर्णिमा के दिन है, अब चतुर्मास चल रहा है, इतने भीड़ एक भी नहीं आते हैं आरती लेने के लिए। पुजारी मोड़ करके रंग जी आरती करते हुए देखा बाहर की ओर, देखा कि भीड़ सारे आंगन में नाचने नाच देख रहे हैं। पुजारी जब एक झांकी देखा नाच, वो भी इसको देख रहा थी श्री कन्हैया लाल। हाँ, एक झांकी जो देखा तो आंख ही लग गया, यहां नहीं फिरा, जल्दी जल्दी से आरती करके रख करके आरती लेने वाले कोई नहीं थे, वो भी लिया नहीं, वो भी छोड़ करके डीटी आ गया बाहर आकर देखने लगा। वारणस खड़ा हुआ, कैसे नहीं होगा, साक्षात परमेश्वर जहां नाच रहे हैं और वहां तो होना ही चाहिए। अब भगवान नृत्य किए दोपहर तक, 12 बजे तक नृत्य करने लगे, और सारे सेवा पूजा बंद हो गया, सारे लोग तो देखते ही रहे, हेड पूजा भी आकर खड़े और देखने लगा। जैसे महाप्रभु दोपहर तक नृत्य करे, शांत कांत हो गए, नृत्य बंद किए बैठे, वह स्मृति हुआ, तो भीड़ के बीच में वेंकट भक्त जी मुख्य पुजारी हेड पुजारी जा करके उनके चरण प्रणाम किए, सन्यासी वेश में थे, प्रणाम किए करके प्रार्थना किए, कृपा करके आप अद्भुत रूप है, अद्भुत नृत्य किए, कीर्तन किए, कृपा करके हमारे घर में आज भिक्षा लीजिए, भिक्षा मतलब भोजन करने के लिए। महाप्रभु बोले ठीक है चलेंगे। तो इतने प्रसन्न होकर के जाके घर में बोले, पूरे परिवार को बोले कि आज एक सन्यासी आ रहे हैं, ऐसे नहीं घर में भोजन करेंगे, सब व्यवस्था करो। तो व्यवस्था किए, मंदिर के पीछे उनका क्वार्टर था, लेके गए तो बालक था गोपाल 12 साल का, उन्होंने आकर के मिला महाप्रभु से, प्रथम बार वहीं पर भेंट हुआ। उस मिलन से भगवान को देख करके बालक गोपाल देखते ही मूर्छित हो गए, सेंसलेस होकर गिर पड़े। प्रथम बार इतने बड़े अतिथि घर में आए, सब खुश हो रहे हैं, पद धूत करेंगे, वो करेंगे, पूजा करेंगे, अच्छा नहीं, बेटा तो सेंसलेस होकर पड़ा है, उठ नहीं रहा, ऐसी समस्या हो गया, क्या करें। तो महाप्रभु कोई उपाय से नहीं उठ पा रहा था, महाप्रभु ने अपने श्री चरण में उनका मस्तक स्पर्श कराए, तब वह उठे, उठ करके फिर रोने लगे। तो महाप्रभु ने कृपा करके अपने दर्शन कराए, उनको आश्वस्त कराए। तो घर वाले देखे कि ये बेटा तो पहले दिन से ही स्वामी जी के प्रति बहुत उनके प्रति कनेक्टेड हो गया हो, तो बोले कि ठीक है, आप अभी पहला मास चतुर्मास है, बाकी तो अभी बाकी है 4 महीना, और सन्यासी लोग ट्रैवलिंग करना नहीं चाहिए, आप यहीं रहिए। महापुरुष स्वीकार कर लिए। किसी ने स्वीकार किए? ये लड़का के लिए स्वीकार किए। महाप्रभु जहाँ कुछ देखते हैं, कहीं भक्त बनाने का कहीं चांस है, तो अपना धर्म भी एडजस्ट कर लेते हैं। हमेशा एक घर में खाते थे, दूसरे दिन नहीं खाते, दूसरे वक्त भी नहीं खाते थे, वन टाइम इन वन फैमिली वन घर, अभी तक यही उनका नियम था। दूसरे बार दूसरे घर में खाए नहीं रहते, सेकंड टाइम किसके घर में। लेकिन आज 4 महीने के लिए लंबा ट्रिप, इतने बड़े अमेंडमेंट रूल में, हमेशा एक घर में एक बार खाते थे बस जाते थे खत्म। लेकिन आज 4 महीने के लिए उनके घर में खाने के लिए रहने के लिए तैयार हो गए। अब संन्यास धर्म है, किसी घर में रहेंगे नहीं। कभी कभी चतुर्मास हो तो विरक्त होकर, क्योंकि आश्रम में मंदिर में रहते हैं, ये तो परिवार है, दो दो भाई है, गृहस्थ है, उनका बेटा है। महाप्रभु जैसे कट्टर संन्यास व्रत धारणकारी, इतने कठोर नियम को पालन करने वाले, आज सारे नियम का अमेंडमेंट करके एडजस्ट करके एक गृहस्थ घर में रह गए फॉर 4 मंथ्स। पहले बार एडजस्टमेंट किए, सोचने के बाद क्यों किए, जब इतने कट्टर फॉलोअर है, नियम के बड़े पक्का रहते थे उन्होंने। जहां तक भगवान के भक्ति के प्रचार का बात आता है, कि अनुगत भक्त आपके रहने से वो कृष्ण भक्ति को स्वीकार करेगा और भक्त बन जाएगा, तो वहाँ यही आवश्यक है कि आप थोड़ा अपने वर्ष एडजस्ट करके करो, वहाँ आपने ढीठपन मत दिखाओ, नहीं मैं इसे करूँ, ये ढीठपन नहीं, यही मूर्खता है। जैसे एक बार की ऐसी घटना हुआ था, एक ऋषि ने बैठ करके जंगल में तपस्या कर रहे थे, आपने एक पलंग लगाए, पलंग के ऊपर बड़ा मृग छाल डाले हैं आखिर चर्म, उसके ऊपर आसन लगाकर बैठकर भजन कर रहे हैं आपने। तो दूर के गांव से एक बधिक, जो बध करने वाला, उन्होंने एक गाय को मारने के लिए दौड़ा था गोबद्ध करता, गाय ने भाग रहा है उसका पीछे दौड़ा है उन्होंने मारने के लिए, और दौड़ते 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 आ करके देखा कि सने उनके आश्रम में घुस गया, पीछे जाके छिप गया, इतने प्राण भय में विकल में छिप गया। तो उसके पीछे पीछे वो गुचर दौड़ के आ रहा था मदद करने वाला, आ करके देखा उन्होंने, गया तो आगे तो नहीं गया, यहीं घुसा, जाके पूछा स्वामी जी से, उन्होंने गाय दौड़ कर आया था, अब देखें। अभी स्वामी जी सोच रहे हैं मैं तो महासत्यवादी हूँ, कभी झूठ नहीं बोला, सच बोल दूँ यही है अंदर घुसा, तब पर पकड़ के लेकर उसे हत्या करेगा। तो इसी केस में अगर स्वामी जी अपने धर्म पालन के लिए भीट बन करके अगर सच बोल दें कि हाँ मैं दिखाऊ यही है, तब उनके लिए सारे तप जप बेकार हो जाएगा, वहां पाप के भागी हो जाएंगे। ये सच के कारण इतने बड़े पाप हो जाएगा उनको, सच बोलने के कारण। उस समय अगर झूठ बोल दे ना नहीं है, तब वहां पुण्य की भागी हो जाए। तो इस प्रकार किसी किसी परिस्थिति में विकट सत्य भी महापाप के कारण बन जाता है, और झूठ बोलना भी महापुण्य के कारण बन जाता है। तो इसलिए सच और झूठ की परिभाषा हम अपनी बुद्धि से निर्णय नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर वो ढीठ बोल कर बोले कि हाँ मैं सच बोलूंगा, देख दिए तो पर गोहत्या का दोष लगा, पाप लगा उन्हीं को। ठीक इसी प्रकार महाप्रभु ने भी जहां आवश्यकता अनुसार नियम को कठिन करना होता है, कोहल करना होता है, केवल प्रचार की दृष्टि से वो एडजस्टमेंट करते थे। इसीलिए यद्यपि इतने कठोर व्रत धारण करने वाले महाप्रभु वहाँ पर 4 महीना तक रहे उनके घर में, और गोपाल जी उनके सेवा में रहे 4 महीना में, उनको ऐसे ट्रेंड अप कर दिए ओनली इन 4 मंथ्स। अपने संग से जाते समय तो वो तो समर्पित हो चुके थे, तो उनको बोल के गए देखो आप माता पिता का सेवा करते रहो, घर में रहो माता पिता का सेवा करो, माता पिता का उपरांत में सीधा वृंदावन जाना, उनको बता के गए। लेकिन ध्यान रखना शादी नहीं करना, महाप्रभु का स्ट्रेट ऑर्डर रही था, घर में रहना, माँ बाप की सेवा करना, लेकिन शादी ना करना। ये कैसे करना आप जानो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। माँ बाप तो प्रेस करेंगे, लेकिन ये तेरा ड्यूटी है माँ बाप के, लेकिन उनका सेवा करते रहना लास्ट तक, उनके बाद में चला जाना, तुम्हारा दादा जाएगा उनके साथ चला जाना। वो दादाजी फंस गए थे उस सन्यासी में, भगवान है कृष्ण के। तो यही हुआ था, 20 साल तक उन्होंने घर में रहे महाप्रभु जाने के बाद, 12 साल का उम्र था जब, 32 साल तक घर में रहे, 20 साल महाप्रभु के विरह में घर में रहकर माँ बाप के सेवा किए, और उनके बाद में उनके माता पिता का देहांत हुआ तो उन्होंने वृंदावन आ गए। जब महाप्रभु पुरी में रहते थे, वृंदावन पहुंचे, पहुंच करके महाप्रभु को ढूंढे, महाप्रभु तो है नहीं, तो उनके अनुजाई रूप सनातन मिले, तो उनको बताया कि इसे इसे महाप्रभु उनको बोले थे, रूप सनातन बोले थे मैं मिलकर आया हूँ सक्र भारत में, उनको बोल कर आया हूँ, वो आएगा जब आ जाएगा उसको टेक केयर करना, 20 साल पहले बताए थे उनको। अब 20 साल के बाद वो लड़का आया, मैं 32 साल का लड़का है, वो आया जाकर जब वे परिचय दिया 20 साल का, रूप सनातन बोले हैं महाप्रभु तो बोले थे, तो बड़े आदर से उनको अपने पास रखे। बाकी जो निभक्त में जैन के मानो फर्स्ट टाइम वृंदावन आए 32 साल में, तो उनको रख करके जो भी उनको जो ट्रेनिंग सीखा जो भी था तो किए, तो पत्र लिखे महाप्रभु के पास कि गोपाल आए हैं वृंदावन आए हैं। जब पत्र पढ़ करके महाप्रभु, जो पत्र मिला, पत्र पढ़े तो उठ करके नाचने लगे, इतने खुश हो गए उठ करके नृत्य करने लगे महाप्रभु सारे भक्तों के सामने। जब उन्होंने शाम के समय तोटा गोपीनाथ में बैठ करके भागवत श्रवण करते थे, उसी समय में एक पत्र वहाँ जो वृंदावन साहित्य भक्त वो पत्र दिए उनको, वो जब सुने कि गोपाल वृंदावन आ चुका है, उठ करके महाप्रभु नृत्य करने लगे आनंदित होकर, इतने खुश हो गए। मतलब इसमें ये पता चलता है, कोई अगर योग्य व्यक्ति घर त्याग करके भगवान के शरण में वृंदावन भक्ति करने के लिए आ जाते हैं, भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं, खुद उठकर नृत्य करने लगते हैं। हम चाहते हैं हमें जीवन में किसी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करूं, यही हमारा प्रोजेक्ट है ना, हाउ टू प्लीज गॉड। अब देखिए कैसे गॉड प्लीज होते हैं, ऐसे ओवर प्लीज हो जाते हैं कि उठकर नाच जाते हैं, क्लास से उठकर नाचते हैं, और क्या प्रसन्न करने का तरीका ढूंढना है। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगम शिक्षार्थमेकं पुरुषं पुराणम श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुधि हम तमहं प्रपद्ये। इसी को शिक्षा देने के लिए तो आए थे चैतन्य महाप्रभु। जब कोई इसी को धारण करके, वैराग्य को धारण करके भक्ति के लिए इस भक्ति भूमि में आ जाता है तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और कोई एक्स्ट्रा प्रसन्न करने के लिए उपाय नहीं। दैट इट्सेल्फ इज सो प्लीजिंग टू लर्न, और नृत्य करने लग जाते हैं, तब खुशी होकर के नृत्य करने के बाद उनके लिए गिफ्ट भेजे। क्या गिफ्ट दिए, यही तो दिखा है, शरण तो ही है। कोपिन दिए, सबसे पहले डोर कोपिन, यही नियम है, ऐसे शास्त्र की विधि के वैदिक रीति के अनुसार जब प्रथम बार गुरु को, गुरु शिष्य को आपने शिष्य के रूप ग्रहण करता है तो उनको नाम और वस्त्र ही दोनों देता है। वैराग्य वस्त्र और कुछ नहीं होता, वैराग्य वस्त्र होता है कौपीन कंथा से, तो कौपीन ही वैराग्य वस्त्र होता है, एक कौपीन और एक बहिर्वास, यही वस्त्र होता है संतों के, बहिर्वास मतलब एक चादर और एक कौपीन, दर्श और कुछ नहीं होता, इतना ही वस्त्र पहनते हैं। तो कौपीन बहिर्वास भेजे महाप्रभु ने गोपाल के लिए, और भी कुछ चीजें भेजे थे, माला दिए, आसन दिए, तो इतने गिफ्ट भी भेजे, प्रसन्न हो गए। और लेकिन गोपाल केवल इसी कौपीन और आसन को पाकर थोड़ी खुश होंगे, वो तो चाहते थे महाप्रभु के दर्शन। 20 साल हो गया जिनको दर्शन नहीं किए, विकल होकर के वृंदावन आकर ढूंढ रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं कि महाप्रभु तो बोले कि मुझे वृंदावन आने के लिए तो यहाँ नहीं है, मैं पूरी चले जाऊँ, पूरी जाने के लिए आदेश नहीं है आपको, यहीं रहो, यहीं रह करके विकल होकर के रोते थे, प्रभु आपने मुझे बोले थे वृंदावन आऊँ, वृंदावन आ गया, आप क्यों नहीं है, मैं जाऊँ आपके पास। तो स्वप्न में महाप्रभु आए, गोपाल तू यहाँ मत आओ, तू मुझे और रूप पे देखेगा, आप ऐसा करो जाओ गंडुकी, गंडुकी जाओ वहां मुझे प्राप्त होगा, ऐसे सपनादेश हुआ। तो उन्होंने गंडुकी वृंदावन से गंडुकी जाने के लिए नेपाल जाने के लिए निकले, नेपाल जाने के लिए उत्तराखंड होते हुए निकले, चलते चलते कई महीना लग गया, पहुंचे जा करके नेपाल में और पोखरा डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में वहाँ से चढ़ते चढ़ते मुक्तिनाथ, उसके ऊपर में दामोदर कुंड। बहुत कठिन है अभी भी जाना, बहुत कठिन है। इतने कठिन रास्ता में उन्होंने अकेले गए, जाके दामोदर कुंड में स्नान किए तो जल तर्पण करने के लिए पानी अंजलि में लिए तो एक सड़ग्राम आ जाता है, बोले एक ही से आ गया, डाल दिए, दूसरा पानी उठाए दोबारा आया, अरे एक ही से आ गया, छोड़ दिए, तीसरा फिर आ गया। तो मन में विचार आया, अच्छा बार बार आता है, इसका मतलब महाप्रभु मुझे बोले थे गंडकी में मैं आपको भेंट करूँगा, यही तो मेरे प्रभु नहीं। अब बेचारा शायद हो ना हो प्रभु इस रूप में आते हैं मेरा पास, तो उनको स्वीकार किए। वो दामोदर शिला था, सड़ग्राम शिला था। तो एक लाए पूजा करने का तो विधि है कि एक कर नहीं तो बारह करो, तो और बारह सर्वलक्षण संपन्न अच्छा शिला लेकर आए, द्वादश शिला लेकर के आए और उन्हीं को महाप्रभु मान करके पूजा करते थे वृंदावन में आकर के। आज भी उनका पूजा स्थली है राधा रमण घेरा, वहीं ये द्वादश शिला को पूजा करते थे। मन में ही सोचते थे प्रभु तो मुझे यही दिए, पत्थर के रूप में दर्शन दिए और क्या करूँ। कितने सुंदर आजान लंबित भुजो कनकावदातो, इतने सुंदर चाचर रूप था उनका, अब ये पत्थर बन के मेरे सामने, तो क्या कर जो है। तो इसे पूजा करते थे। एक बार पंजाब से एक सेठ आया वृंदावन को, सब बड़े बड़े सेठ साहब कराते हैं दान दक्षिणा देने के लिए। वो आके पहुंचा, वहाँ सब छह गोस्वामी थे, उनका अपना अपना विग्रह था, मंदिर था, सारे विग्रह में दर्शन करने गए और कई चीज तक भेंट में दिए, अलंकार दिए, भोग सामग्री दिए, वस्त्र आभूषण दिए, सबने स्वीकार किए। कोई बड़े सेठ आए बहुत न्यू आउटफिट न्यू ड्रेस देते हैं, अलंकार देते हैं, भोग राग देते हैं, चुकी तो सब सुनने के बोले एक बहुत बड़े गोस्वामी वो राधारमण घेरा में बैठे हैं। तब तो नाम राधारमण घेरा नहीं था, जयसिंह घेरा बोलते थे उसको, बोले वहाँ है जयसिंह घेरा, तो वहाँ भी आए, आकर देखे भट्ट गोस्वामी बैठ करके अपने सड़ग्राम सेवा कर रहे हैं। आकर बोले गोस्वामी जी, गोसाई जी दर्शन दीजिए, गोसाई जी, गोसाई जी बाहर आए, बोले कृपा करे प्रणाम किए, थोड़ा भेंट सामग्री स्वीकार कीजिए, आपके ठाकुर जी के लिए थोड़ा भेंट सामग्री स्वीकार कीजिए। उनको क्या पता कि सड़ग्राम को जाकर के बोले सब गोस्वामी की जब विग्रह है उनका विग्रह होंगे। तो बढ़िया सुंदर कीमती पोशाक दिए, कई सुंदर सुंदर माला हाथ के लिए, बेक गला के लिए, कान के लिए, मथा के, पैर के, अलंकार जेवर सब दिए। भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी बोलते अरे इसको क्यों दे रहे हैं, ना नहीं गोसाई कृपा करके आप संत हैं, आप स्वीकार कीजिए, ठाकुर जी की सेवा में लगाना है आप क्या बोलते, मेरे ठाकुर जी के कोई काम के नहीं, नहीं 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 गोसाई जी ऐसे मत कीजिए, प्लीज रखिए रखिए। क्या करे वो बेचारा तो जबरदस्ती पढ़ के देखे गया, अरे मैं उसको मेरा तो पत्थर है गोल, वो क्या भैंस पहनेगा भैंस पोशाक नहीं, अलंकार पजेब माला मुकुट वो क्या करेगा, पत्थर वो कोई विग्रह है थोड़ी ऐसे पहनेगा। लेकिन वो माना नहीं, वो बोला नहीं गोसाई आप मेरे साथ कपट मत करे, आप स्वीकार करे स्वीकार दे के गया। वो तो गोसाई जी वो दुखी करके समझता नहीं, दे गया उसको क्या मेरे काम में लगेगा, चलो किसको दे दूंगा, मेरा तो कोई काम का नहीं। दूसरे दिन नरसिंह चतुर्दशी व्रत था, नरसिंह चतुर्दशी के दिन भट्ट गोस्वामी जब रहते हैं, बाकी गोस्वामी तो सब अपने भजनानंदी महात्मा यही एक ही गोस्वामी थे जो ब्राह्मण परिवार के थे, बाकी कोई ब्राह्मण परिवार के नहीं थे, ये उच्च कोटि के भट्ट ब्राह्मण परिवार के थे। तो उनसे सुनने के लिए बहुत लोग इकट्ठा होते थे, तो उन्होंने नरसिंह भगवान की कथा सुनाने के लिए उनके पास सारे लोग आ गए, सारे गोस्वामी आगे बैठ गए, जो भी उच्च सेवक सब आप भट्ट गोस्वामी आप कथा कहिए पंडित हैं, और नरसिंह भगवान का क्षेत्र तो दक्षिण भारत है, वो दक्षिण से आए हैं, अच्छा कथा कहेंगे। काल जैसे ड्रामा का था ना, अहोविलम से नृसिंहदेव का कमेटी ले रहे थे, तो इस प्रकार अहोविलम क्षेत्र दक्षिण क्षेत्र है, तो उन्होंने नरसिंह भगवान के चरित्र कथा सुनाए भट्ट गोस्वामी जी ने, लंबा प्रकार से कथा विशद भाव में वर्णन करके सुनाए भागवत से। सुना करके लोग बड़े प्रसन्न हुए, गए उनको विदा करके संध्या आरती शयन आरती करने के लिए आए आपने सालग्राम को। आरती करते समय को ही कथा याद आया, रोते रोते आरती किए। भट्ट गोस्वामी जी ने बोले, हे प्रभु सालग्राम को समझो, मैं कितने हतभागा हूं, आप एक 5 साल का क्षत्रिय लड़का, असुर का लड़का, उसके लिए असुर का लड़का 5 साल का है, उसके लिए अब खंभे से निकल पड़े, अब मेरे लिए अपने सालग्राम से भी नहीं निकलते, क्योंकि निशिंदु का कथा कह रहा है ना, वही याद आता था उनका। बोले, हे प्रभु श्री प्रहलाद कितने आपके अच्छे भक्त थे, जिसके लिए आपने भरी सभा में खंभे फाड़ कर निकल पड़े, मैं कितने नीच हूं, हतभागा हूं, डेली अब पूजा करता हूं लेकिन कोई मतलब के नहीं मेरे लिए, आपको आपने साक्षात विग्रह सालग्राम से प्रकट नहीं हो पाते, मैं तो हतभागा हूं। ऐसे रो रो करके आरती किए, बड़े दुख लगा, अगर आप प्रकट होते तो ये मेरे जेवर है, अलंकार है, आपको पहनाता, श्रृंगार करता, सेवा करता, लेकिन हाय मेरा दुर्भाग्य की सीमा है, मेरे लिए नहीं होते आपने। ऐसे दुख करके रोते रोते शयन आरती करके सो गए। भगवान का तो एक ही काम होता है, भक्त वांछा कल्पतरु। गोपाल भट्ट गोस्वामी जैसे भक्त, उनके इसे रो रो करके नृसिंह भगवान को चिंता करके रहे, प्रहलाचरित प्रहलाद कितने बड़े थे, उनके लिए आप स्तंभ से निकले, मेरे लिए नहीं, रात भर वही सोच। भगवान ने उनको, भगवान को सहन नहीं हुआ गोपाल जी के इस प्रकार उत्कट आर्त विलाप। उन्होंने बोले, कोई बात नहीं, तेरे लिए प्रकट हो जाऊंगा। तो सोए थे, सुबह उठ करके उषाकाल में जमुना स्नान करते हैं, आजकल जैसे ना बाथरूम है 3:30 बजे जाके नहा लेते हैं, तब जमाने आटा से बाथरूम हुआ नहीं करता था, ये हमारा हिंदू संस्कृति का वैदिक नीति नहीं है, घर के अंदर टॉयलेट बाथरूम करें। पहले जमाने में तो कहीं नहीं होता था, जंगल चुराने जाते थे बाहर, मतलब कहीं जाते थे, उससे बड़े बड़े राजा जमींदार हुए, जंगल पानी नहीं रहा तो घर के दूर कोई अलग से तहखाना ऐसे बनाया जाता था, लेकिन आजकल तो बेडरूम किचन के साथ अटैच होता है, अटैच, इससे बड़े गर्व मन करते हैं, अटैच क्या, अटैच टॉयलेट, अटैच रेडी का माना, दूसरा कुछ नहीं, टॉयलेट अटैच, किसका साथ, बेडरूम के साथ, किचन के साथ, क्या गर्व है। तो ऐसा तो था नहीं, तो इसलिए उठ करके 3:30 बजे नहाने का कैसे जा सकते हैं, अंधकार है, 3 बजे को जाएगा नहाने के लिए ना, ये नहीं था, इसलिए परंपरा ही नहीं था। उठ करके भजन करते थे मुंह धोकर के पास घर में, जब तक भजन करेंगे जब तक फरचाना मतलब दिखाई ना पड़े, क्योंकि सांप बिच्छू कहीं कहाँ थोड़ा दिखाई तो पड़े, रास्ता को देखा पड़े, तब तक कहीं नहीं जाएंगे, घर भजन करेंगे, वो हो जाने के बाद दिखाई पड़ने लगे तब उठ कर जाएंगे, नदी नाला में तो सामने घर में तो होता नहीं था पानी, पानी तब जाएंगे, डोल डाल मन जब बाथरूम टॉयलेट बाथरूम जाएंगे, स्नान टान करके नित्य क्रिया करके फिर आते थे, यही नहीं। तो उन्होंने फिर जमुना जी के स्नान करने जाना था, जमुना किनारे यहाँ जंगल में जाना था, टॉयलेट वगैरह और फिर जमुना जी में स्नान कर आना था, तो तब तक तो बैठे थे, अंधकार था, प्रतिपदा था चतुर्दशी के बाद पूर्णिमा, पूर्णिमा तिथि से भाई रात को सेना चांदनी नहीं उठेगा, सुबह सुबह तो है ही है, तो अब पूर्णिमा शुरू नहीं था, चतुर्दशी दिन रात है, पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह का समय है, एक बार भोर भोर समय में उठ करके अब जब देखा थोड़ा पढ़ने लगा तो 5-5:30 बजे समय होगा तो उठ करके स्नान करने गए जमुना। स्नान करके उनका नीति था प्रतिदिन स्नान कर जमुना जी को जल लाते थे, सड़ग्राम का अभिषेक कराते थे। बोले आज तो पूर्णिमा है, आज तो अच्छा सा अभिषेक करूँगे जमुना जल में। तो एक बड़ा गगरी भर के स्नान करके जल ले करके घोर अंधार अंधार थोड़ा भी सुबह के लोग उठे नहीं, उठ करके आ गए। आ करके पट खोले, मंदिर खोल करके जैसे पट खोले, खोलते ही चमक पड़ी। अरे ये क्या है, उनको सब क्योंकि अभी भी अंधकार घर का अंदर अंधारा था अभी, लेकिन वो सालग्राम शिला जो था वो फट गया था। वो तो सोचे कोई सांप है, सालग्राम बीच से इसी फट गया था, खुल गया था, चमक के उठे। ये क्या हो गया, हमारा गोल काला सालग्राम था, ये क्या हो गया। तो फिर ला करके दीप प्रज्वलित किए, दीप प्रज्वलित करके देखे ये विग्रह जो दर्शन करते हैं वही विग्रह स्वयं प्रकटित श्री राधा रमण लाल जी की है ना, वही अपने आप प्रकट हुए गोपाल भट्ट के भक्ति के प्रभाव से। स्वयं प्रकटित विग्रह स्वयं भू दामोदर शिला को फाड़ करके उनसे प्रकट हुए और उसको दर्शन करके स्वयं अपने आप अपने फॉर्म में आए। आप उसको दर्शन करके गोपाल भट्ट इतने कृतार्थ हो गए, दंडवत प्रणाम किए, बोले हे प्रभु आज तक दर्शन मुझे नहीं दिया था, आज ही दर्शन दिए मुझे आपके दर्शन। तो गोपाल भट्ट उनको देख करके तुरंत उनको महाप्रभु का दर्शन हुआ बिल्कुल। बोले ये तो मेरे प्रभु है, उनको राधारमण नहीं दिखते थे, बांसुरी वाले नहीं दिखते थे, उनको क्या दिखाई पड़े। हाँ उनको तो वैराग्य विग्रह महाप्रभु दर्शन हुआ, इसलिए उनका नाम राधा रमण हुआ। राधा जी का विग्रह नहीं उनके पास, लेकिन हे राधा रमण, राधारणी के बिना कैसे, क्योंकि गोपाल भट्ट देखे ये तो मेरे महाप्रभु हैं। महाप्रभु का रूप क्या है असली में, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं, तो टू इन वन, वो भी टू इन वन, वन फॉर्म में टू है, एक ही रूप है लेकिन दो है, राधा रमण लाल की जय। तो इस राधा रमण के रूप में महाप्रभु के दर्शन किए गोपाल भट्ट, अब बड़े प्रसन्न मुद्रा में उनको अभिषेक किए। आज के दिन राधारमण मंदिर में आज बहुत विशेष अभिषेक हुआ होगा, हम तो प्राय हर साल जाते थे, इस बार यहीं रह गए। सुबह से शुरू करते हैं 8-8:30 बजे से अभिषेक, 12-1 बजे तक जलता है, लगभग 200-300 लीटर दूध से अभिषेक होगा, 200-300 लीटर्स दूध का अभिषेक, बड़ा विशद अभिषेक होता है। बाल्टी बाल्टी चरणामृत लेकर खुद से लोग पीते हैं, राधारमण के बाहर लेकर अभिषेक करते हैं। और आज शाम के समय में राधारमण लाल हाथी में चढ़ करके दर्शन देंगे, बैठ करके बाहर आ करके बड़े गुभर दर्शन। और आज का दिन केवल साल में एक बार जो वस्त्र डोर कोपिन और जो आसन महाप्रभु ने गोपाल भट्ट जी प्रथम बार वृंदावन पहुंचे थे भेजे थे, वो एक पैक करके रखे हैं कांच की शीशा के अंदर, वो आज के दिन दर्शन कराते हैं बाहर लाते, वो पाउडर फाउडर हो चुका है, छान छान जो भी दर्शन कराते हैं गोपाल भट्ट के लिए महाप्रभु ने जो भेंट भेजे थे वो दिखाते हैं उसको, क्योंकि आज उनके जन्मदिन है। जैसे रामनवमी के दिन भगवान राम की जन्म जयंती करते हैं, कल चतुर्दशी में भगवान नरसिंहदेव की जन्म जयंती पालन की, तो आज पूर्णिमा के दिन श्री राधा रमण लाल की जन्म जयंती है। तो आज उनके जन्मतिथि के अवसर पर तो मैं सोचा कि उनके बारे में कुछ अच्छा किया जाए, है ना। तो आज भी वृंदावन में जितने विग्रह हैं, अनेक भगवत विग्रह दर्शन करते हैं, उनमें से जो गोस्वामी के सभी विग्रह थे, जैसे राधा मदन मोहन, राधा गोविंद देव, राधा गोपीनाथ इत्यादि इत्यादि, इनमें से प्राय सभी विग्रह वृंदावन त्याग करके जयपुर आदि स्थान में आ चुके हैं। उनमें से केवल एक ही विग्रह जो रह गए वृंदावन में वो है राधा रमला, छोटे है उनको पसंद नहीं की छोटे वो रह गए, ये स्वयं विग्रह वही रह गए, अभी भी है वो पसंद करते हैं परंपरा में। अब गोपाल भट्ट गोस्वामी वो तो विरक्त संत थे, भाई थे, वो उनके प्रथम शिष्य जो नेपाल जाते समय में गंडकी यात्रा में उन्होंने देवबंदी ग्राम आता है उस ग्राम में एक रात रुके थे एक ब्राह्मण परिवार में, उनका तभी पुत्र संतान नहीं हुआ था, उन्होंने बोले थे संत महात्मा की सेवा करते हैं आप, कोई अगर बेटा होगा तो हम आपके सेवा में भेज देंगे, तो बोले ठीक है चले गए थे, उनको पता नहीं था। हटात एक दिन एक लड़का आया उनके पास, तो तुम कौन हो ना, आप एडवांस बुकिंग करके आए थे मेरे लिए, हमारे माता पिता भेज दी, बोले जाओ उनके पास, उनका है, बोले कौन पता नहीं मुझे, नहीं पता नहीं, मेरे बाप माता मुझे बोले उन्हीं को आशीर्वाद देकर आए थे, उनके बाद में उनका लड़का हुआ, उनको भेज दी, बोले जाओ ब्रज में है उनका ही गोसाई नाम है जाओ, वो आकर के उनके शिष्य बन के उनके साथ रहे, उनके सेवा की, वो भी नियंगी थे परिवार के उनके, उनके भाई वो आए थे दामोदर करके, वो भी आए, वो विवाह किए थे, उनसे जो फिर परिवार चला वो फिर राधा रमण की सेवा स्वीकार करने लगे धीरे धीरे धीरे। अभी इतने बढ़ गया परिवार, अभी कितने फैमिली हो गए, 50 सैकड़ों फैमिली हो गए, फैले हुए चारों तरफ। अब उनका कभी कहा 3 साल में एक बार बारी आता है शाखा, 3-3 साल में बारी आता, फिर भी वो कर रहे हैं उनके उस समय परिवार, उनसे जो परिवार आया है करके सेवा चल रहे हैं। लेकिन अभी भी वृंदावन में वो विग्रह है जो उन भट्ट जी के प्रेम से, उनके भक्ति के भाव से, उनके प्रार्थना से स्वयं सड़ग्राम से स्वयं रूप प्रकट हुए थे। ये प्रमाण है कि भगवान है और भक्ति में प्रकट होते हैं, ये उसके प्रमाण है, प्रूफ है, देखो जाकर। अभी कोई बनी बनाई विग्रह नहीं, स्वयं यही है कि भक्ति के द्वारा ही भगवान बस होते हैं, ये इसका प्रमाण, और कोई उपाय नहीं है केवल भक्ति के। और वो भक्ति तो कर रहे थे, लेकिन जब इस प्रकार के विस्मय उत्कट भक्ति के प्रार्थना किए तो उन्हें प्रकट हुए। प्रहलाद जी के लिए नरसिंह देव रूप प्रकट हुए, अब गोपाल भट्ट के लिए राधा रमण रूप, दोनों ही प्रकट हुए, ये खंभा से एक पत्थर से सड़ग्राम से, लेकिन दोनों में कितने, दोनों तो एक ही है, वही है, लेकिन उनको देखने में इतने उग्र विग्रह है, इतने भयानक चेहरा देख करके ब्रह्मा तक भी पास नहीं जा पाते, भटक गए, ब्रह्मा भी पास नहीं जा पाए, सारे देवता नहीं जा पाए, लक्ष्मी तक भी पीछे हट गए। लेकिन उनके लिए तो कोई भी आगे आएगा पीछे कौन जाएगा, इतने सुंदर रूप है, बाल विग्रह है, इतने सुंदर रूप है। तो ही है भगवान, अणु रणियान महतो महियान, अणु से परमाणु से छोटे हैं, महान से महान है, अति कोमल से कोमल है, कठोर से कठोर है, उग्र से उग्र है, शांत से शांत है, ये भगवान की विशिष्टता है। एक दिन, जस्ट वन डे, एक नाइट डिफरेंस है, काल शाम को उनके बात सुनने थे उग्र विग्रह, आज सुबह देख राधा रमण कितने सुंदर विग्रह, वो ये कमाल, तो ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है, चाहे प्रहलाद के रूप में करे, चाहे गोपाल भट्ट गोस्वामी के रूप में करे, जो जो जब जब जैसे जैसे किए हैं उनको ऐसे जे यथामान प्रपद्यंते काम प्रति भजामि हम, इसी प्रकार उनके भक्ति के अनुरूप उन्होंने निदर्शन दिए, प्राप्त हुए हैं। तो इसके प्रमाण के रूप में आज वैशाख पूर्णिमा में श्री राधा रमन लाल गोपाल भट्ट के सेवित विग्रह के रूप में आज भी दर्शन देते हैं, है ना। आप लोग दर्शन किए होंगे तो गए होंगे, जो नहीं किए हैं तो अभी आपका सामने यहाँ दर्शन कर लीजिए। आज उनका जन्मदिन है तो इसलिए उनके जन्मदिन में आप, हम तो प्रस्तुत नहीं है कुछ उनके बर्थडे फेस्टिवल करने के लिए, काल तो कर लिए आज, फिर दोबारा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनके बधाई तो कर सकते हैं, है ना। नहीं बधाई करने के लिए थोड़ा कीर्तन करके और उनके कृपा की याचना करके क्या करके वही श्रद्धांजलि ज्ञापन किया जा सकता है ना। श्री श्री राधा रमण लाल जी की। कौन सा बोलेगा कीर्तन क्या गाय? जय जय राधा रमण हरि बोल।
गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मैनो राधा गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Ram, Hare Ram, Ram Ram. Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Jaya Prabhu Pade Dana Dana He, Jaya Prabhu Pade, Jaya Prabhu Pade Dana Dana He, Jaya Radha. Shila Prabhupada Dana Dana He, Shila Prabhupada Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Shila Prabhupada Dana Dana He, Jaya Nitai Gosundar, Nitai Gosundar, Nitai Gosundar, Jaya Nitai Gosundar. Jaya, 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 Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Thank you.
ইসকন ভক্তবৃন্দে কি সমবেত জল ভক্তবৃন্দে কি জয় গৌর প্রেমানন্দ
सेव हुआ था क्या?
मैडम ये सब चीज़ें ऐसे मिला मिलती हैं।